पेज नंबर 17 से, ठीक है। पिछले अमाल को भी नहीं दोहराते, पीछे दोहराए थे, लेकिन इंशाल्लाह जन्नत वाले कुछ और अमल करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फौसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। जन्नत वाजिब करने वाले अमाल, हम इसमें से अगले अमल पे चलेंगे, और किताब के एतबार से पेज नंबर 17 है, और अहदीस के एतबार से 12 नंबर की हदीस है। अगला अमल जिस पे खुशखबरी दी गई जन्नत की, वो है कुरान हिफ्ज करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरानी इक्रा वर्तकी वर्रतिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्ना मंज़िलतका इंद आखिरी आयतिन तक्रा बिहा। ऐसे ऐसे मैंने इसलिए पढ़ा कि आप लोग भी बाद में पढ़ सकें, दोहराएं इसको अगर। तो तर्जमा इसका क्या है, युकालु लिसाहिबिल कुरानी, कहा जाएगा साहिब कुरान से। कब कहा जाएगा? क़्यामत के दिन। अब यहाँ जहन में रखिए, साहिब कुरान से क्या मुराद है, जिसने कुरान को जज्ब किया। वो कैसे किया उसको हम बाद में देखते हैं। क्या कहा जाएगा? इकरा, पढ़ो, पढ़ते जाओ। वर्तकी, और चढ़ते जाओ, यानी कुरान की आयतें पढ़ो, और हर आयत के साथ तुम्हारा दर्जा जन्नत में बढ़ता जाएगा। वरत्तिल कमा कुंता तो रत्तिलु फिद दुनिया, और इस तरह ठहर ठहर कर पढ़ो जैसे तुम दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ते थे, यानी तिलावत का अंदाज जैसे था वैसे ही पढ़ो। फइन्ना, बस बेशक, मंजिलतका, तेरी मंजिल यानी तेरा मुकाम क्या होगा, इंद आखिरी आयतिन, आखिरी आयत के करीब, तकरा बिहा, जिसको तू पढ़ता था, यानी साहिब कुरान जिसके सीने में कुरान होगा, क़यामत के दिन उसको कहा जाएगा कि कुरान पढ़ते जाओ और उसी के साथ जन्नत के दर्जों को पाते जाओ। अब आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ है साहिब कुरान, हम इसको हाफिज़ कुरान किस तरह से समझते हैं। कुरान का हिफ्स दो तरह का होता है, एक होता है कुरान के अल्फाज का हिफ्स, जिसको मारूफ तौर पर हमारे यहाँ हाफिज़ कुरान ही कहते हैं, और इस अमल को हम कुरान हिफ्स करना कहते हैं अल्फाज के साथ। बहुत खूबसूरत अमल है और ये एक मोजज़ा है। आपको पता है कि पिछली किताबों में मुसलमानों की और इस्लाम की और कुरान की जो खूबी लिखी थी, उसमें एक ये खूबी थी कि ये ऐसी कौम है कि जिनके सीनों में ये किताब होगी, और कुरान के बारे में भी मस्तुखफिजू के लफ्ज़ आते हैं कुरान में, यानी कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो पूरी लफ्ज़ पर लफ्ज़ याद हो जाती है। अभी मैं जो बोल रही हूँ, अगर आपसे कहूँ कि आप मेरे बोले हुए अल्फाज को दोहराएं, इवन अगर आपके ख्याल में आप मेरा एक एक लफ्ज़ लिख रहे हैं सुनकर, तो आप फिर उसको दोहराएं। कितने लोग हैं जो मेरा एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला सब बोल सकते हैं? कतई नहीं बोल सकते। लोग पूरी भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी साइंस की बुक देख लीजिए, मैथमेटिक्स की देखिए, उर्दू की देखिए, जो सब्जेक्ट्स भी आपने पढ़े, क्या आप उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद कर सके? कुरान कैसे याद होता है? एक छोटा सा बच्चा भी पढ़ ले। ऐसी कई वीडियोस हैं जो आपको गाहे बगाहे दिखाई जाती हैं कि जिसमें बच्चे भी कुरान पढ़ते हैं और वो गलती निकालते हैं। आज सुबह भी जब मस्जिद नबी में थी मैं, तो मेरे बिल्कुल साथ ही एक माँ बैठी हुई थी। शक्ल से माँ मैं नहीं पहचान सकी कि अरब है, ऐसी लग रही थी जैसे फीचर्स होते हैं एशियंस के, पर एक बच्ची बैठी थी साथ। पहले तो मुझे देख के एकदम ऐसे लगा, वेस्टर्नाइज थी थोड़ी सी बच्ची, लेकिन उसके सामने कुरान था। वो इतना खूबसूरत कुरान पढ़ रही थी बच्ची, 7-8 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत उसके मखारिज थे। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बच्ची अरब घर की है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ये बच्ची अभी इस उम्र में सुबह उठ के फजर के बाद कुरान पढ़ रही है, तो इंशाल्लाह इसको आदत पड़ ही जाएगी ना, तो इसको समझ भी आता है। तो लफ्ज़ों का हिफ्स एक खूबसूरत हिफ्स है, लेकिन याद रखें, एक होता है कुरान के मानी और मफहूम का हिफ्स। जब आप कुरान को एक दफ़ा अपनी ज़ुबान में समझ लेते हैं, उसके बाद जब आप कुरान को पढ़ते हैं ना, अल्फाज ना भी याद आए, लेकिन आपको उसका मानी समझ आएगा। चलो आपका इम्तिहान लेती हूँ, ये जो यहाँ किरत होती है मस्जिद में आजकल, कितने लोगों को समझ आती है पूरी? आपको पूरी समझ आती है? आपको पूरी आती है? आपको आती है? आपको? चलिए मान लेते हैं कि आप में से कुछ आधे लोगों को पूरा समझ आता है, आधों को 50% आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि कितनों को पता चल जाता है कौन सी सूरत है, कहाँ से पढ़ रहे हैं? 70-80% याद रखिए कि बीच के ये मराहिल होते हैं। शुरू शुरू में जब हम आते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती, फिर हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें लव समझ आते हैं, ये नहीं पता चलता कहाँ से। फिर अगले साल और आएंगे, थोड़ा और पढ़ के आएंगे तो आपको लगेगा कि ये पता है कि कुरान में है, लेकिन किधर है, बिल्कुल उलझन आने लगती है कि याद नहीं आ रहा कि कौन सी सूरत है। लेकिन जब आप इस सफर में चलते ही जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, फिर एक वक्त आएगा कि आपको पता चल जाएगा ना। तो जब आपको अल्फाज की समझ आए और फिर उसके साथ मानी की समझ आए, तो ये है असल में नूर अला नूर। सो नूर पे नूर, रोशनी पे रोशनी, तो यही जिसको उर्दू में आप कह लीजिए सोने पे सुहागा, यही है कि आप कुरान के भी हाफिज हों और उसी तरह दूसरी तरफ भी हों। ज़रूरत इस बात की कि हम इस पे थोड़ा सा वक्त लगाएं। मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ कि जब आप कुरान का तर्जुमा याद करते हैं तो आप कोशिश करें कि उस हिस्से को ज़ुबानी भी याद करें। एक आध स्टूडेंट ऐसी है कि जिन्होंने सरप्राइज़ दिया, मैं बिलीव नहीं कर सकी वैसे अभी तक, लेकिन हमारा एक कोर्स जब पूरा हुआ, तकरीबन वही 18 मंथ का कोर्स होता है, तो ऑनलाइन पे भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, ऑनलाइन पे 4 दिन की जो क्लासेज है उनमें 3 साल में पूरा होता है, कुछ ऐसी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उस्ताज़ा इस कोर्स के साथ सबीलुल जन्नाह के साथ पूरा कुरान भी हिफ्ज़ कर लिया जी। जो सबक रोज़ का होता था ना, कहती थी कि मैं उसको साथ ही याद कर लेती थी, और वो नहीं बल्कि उनके साथ एक और उनकी साथी थी। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि बाद स्टूडेंट वैसे बड़ा चीखते हैं कि जी बहुत प्रेशर है और बहुत ही हमें दूसरों को पढ़ना पड़ता है, टेस्ट देने पड़ते हैं, ये भी है। अब ये चीज़ें तो अपनी मर्जी की थी ना, लेकिन जो चीज़ उन्होंने उस पर अपने तौर पर बढ़ाई वो इससे ज़्यादा थी ना। तो इट्स पॉसिबल। और वो कहती है कि माशाल्लाह मेरा दौर चल रहा है कुरान का तर्जुमा। अब वो आगे से अब नूरुल्लाह नूर कोर्स भी कर रही हैं इस वक्त स्टूडेंट वो, माशाल्लाह। ये है असल पढ़ने का तरीका। क्योंकि जब मुझे अपना याद आता है कि मैंने पहली दफ़ा कुरान का तर्जुमा पढ़ा किया, तो मुझे अपनी टीचर पे इतना रश आता था कि वो दर्स देती हैं तो बीच में आयतें कोट करती हैं, कहती थी बाजी को कैसे पता चलता है यहाँ ये आयत पढ़नी है, ये कहाँ की है बाजी। और वो हाफिज़ नहीं थी बाजी, हाफिज़ा नहीं थी, यानी लफ्ज़ों की हाफिज़ा नहीं थी। तो कभी उनसे पूछना तो वो मुस्कुरा देती थी, हंस देती थी आगे से ना। तो मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला कभी ये दिन आएगा कि कुरान की आयत बगैर देखे पढ़ो। क्योंकि देखिए जितना मर्जी आप लेक्चर तैयार करके लिख के रखे, हर वक्त तो लिखी हुई बातें नहीं आप करते ना आम जिंदगी में, और उनके जुबान से मैं चलते फिरते में सुनती थी कि वो आते। लेकिन मैंने फील किया कि एक मौका ऐसा आया, यानी ये मैं खुद फील कर सकती हूँ, ये मैं आपको बड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि मैंने भी हिफ्ज़ नहीं किया हुआ कुरान पाक, जिसको बाकायदा आप हिफ्ज़ करना कहते हैं। लेकिन मुझे शुरू से अपनी एक उस्ताद पे बड़ा रश्क आता था, वो देती भी दर्स फिल बदी थी, देख के लेक्चर नहीं देती थी, और कुरान की आयतें बीच में कोट करती थी, और एक आयत की तो उसी मौजू की दूसरी जगह से भी कर लेती थी। तो मुझे बड़ा ही एक किस्म का वो एक था कि मुझे ऐसे क्यों नहीं आता। इस तरह भी कोई मौका याद आता है ना बंदे को, कोई रमज़ान था या कोई उम्रा था, मैंने दिल की गहराई से दुआ की कि अल्लाह इस कुरान को मेरी ज़ुबान पे जारी कर दे। रब्बी शाहली तो पढ़ते ही हैं जो भी है, लेकिन बस मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरी किसी मौके पर कोई दुआ कबूल हुई कि आप मुझे आयतें याद हो जाती हैं, बीच में कोट कर देती हूँ या खुद ही हो जाती हैं। ऐसे लगता है कि ज़हन के सामने खुल जाता है कुछ ना। मैं सोचती हूँ कि ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है, ये अल्लाह ही का। अल्लाह ताला खुद सूरत क़यामत में फरमाते हैं कि इन अलैना जमा हुए, इसको आपके सीने में जमा करना फिर इसको आगे बयान करवाना ये हमारे ही हाथ में। अब आप देखिए मैं आपसे बात करते हुए सूरह क़यामत का हवाला भी दे दिया, आयत का दे, ये कैसे हुआ? क्या मैंने याद करके रखा हुआ था कि आज आपको सूरह क़यामत का ये करना? नहीं, ये अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला। जो ही एक आयत आती है उसके मौजू की आती है। खैर ये सफ़र तय हुआ, फिर उसके बाद अगला सिलसिला क्या हुआ कि मुझे ये आता था कि मुझे सूरतों का नंबर पता चल जाए। शादी के बाद सर के साथ, आपके जो सर हैं उनके साथ मेरा हमेशा यही होता था कि जब भी हम मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलना ना, तो हमने एक दूसरे से पूछना विच सूरा विच सूरा, ये मुझसे पूछते थे ये मैं पूछते। फिर भी मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट होती थी कि अल्लाह ताला मुझे ये तो पता चल जाता कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, तो मुझे सूरतें क्यों नहीं याद होती। फिर मैंने तड़प के दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे याद हो, मुझे पता चले ये किस सूरत की है। बिलीव मी, जिस चीज़ ने मुझे इसमें मदद दी है ना, आप हैरत होगी आपको जो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सूरत किधर है कुरान में कहाँ है। ये मुझे दौरे कुरान से हुई है। हर साल दौरे कुरान कराने के बाद कुरान की आयतों के साथ मुझे इस तरह की दोस्ती महसूस होती है अब, कि जैसे आप अपने रिश्तेदारों को पहचानने लग जाते हैं। आप में से जो लोग पहली दफ़ा मदीना आए हैं उनको यहाँ की गलियाँ रास्ते मुश्किल लग रहे हैं ना, लेकिन आप देख ही रहते कल गाड़ी में हम लोग बातें कर रहे थे, जो लोग आते जाते कोई इसमें कोई बहादुरी नहीं है, जो आता है उसको पता चल जाता है। अब मुझे आप कहे तो मुझे लगता है कि मुझे 50% रास्ते पता है, जिधर जिधर हम रहे हैं वो मुझे सारे पता है, जहाँ कभी नहीं गए उसका कुछ भी नहीं पता ना। तो मैंने फील किया कि दौरे कुरान सुनने सुनाने और ऑफकोर्स जब हम खुद कराते हैं उसके साथ याद रहता है। पारा पूरा रोज का चलता है ना, तो हर पारे की जो फेमस आयतें आती हैं ना, जो बीच में जो बहुत आती हैं, तो मैं उसी वक्त पढ़ाते हुए मेरे माइंड में क्लिक करता है कि अच्छा मैंने याद रखना है कि ये शुरू के पारों में आई थी तो इसके अंदर तो पहले 10 पारों के अंदर है, अच्छा ये बीच के रोजों में आई तो बीच में, यानी बस ये एक सफर है। इसके लिए जितना आप कुरान से मोहब्बत कर ले, इसमें इन डेप्थ जाए, जितना आप इसको वक्त देंगे, तवज्जो देंगे, मोहब्बत देंगे, आप देखेंगे कि उतना ही आपको फायदा होगा। तो वक्त के साथ मुझे भी तो आगे बढ़ना चाहिए ना, एक तरफ दुआएं और एक तरफ कोशिश। ये कुरान हिफ्ज कैसे करते हैं आप नहीं सोचते? मुझे रश्क आता है उन बच्चों पे जो पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, अमल करे ना करे, नमाजें पढ़े ना पढ़े, कुरान पूरा पढ़ते हैं। तो मैं देखती हूँ कि एक तरफ आपकी कोशिश और दूसरी तरफ दुआएं। सिर्फ दुआओं से भी कुछ नहीं होता और सिर्फ कोशिश से भी कुछ नहीं होता, ठीक है? तो जितना आप इसके लिए तड़पें, कोशिश करें करें, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके बच्चे छोटे हैं, आप अच्छी माँ होने का सबूत है। देखिए हमें यार आप वापस तो नहीं जा सकते ना अपनी जिंदगी के, अब हमारी उम्रों के जो हिस्से शुरू हो चुके हैं, अब हम इसमें से 10-20 साल पीछे जाके अपनी जिंदगी का सफर शुरू में तो नहीं ले सकते ना, नहीं कर सकते ना। आप अपने सारे ख्वाब अपने बच्चों में पूरे करें, अच्छी माएं बन जाएं, अपने बच्चों के दिल में, उनके खून में, जिस्म में दो मोहब्बतें भर दें। कौन सी? ये भी ठीक है, ये आपने काफी सुना हुआ है ना जुमला, तो इसलिए हम बोलते हैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, ये सुना सुनाया जुमला। लेकिन अगर आप करना चाहें ना, ऑफकोर्स बात तो यही कहने लगी हूँ, कोई नई बात तो नहीं मैं आपको बताने लगी, अल्लाह ना करे कभी कोई नई बात आप मेरे मुंह से सुने, लेकिन अपने बच्चों को कुरान पाक की मोहब्बत और नबी सल्लम की मोहब्बत दे दें। देखिए मैंने शौर से बोली है ये बात, कुरान की मोहब्बत दें अल्लाह की खुद ही आ जाएगी, अल्लाह नजर नहीं आता ना तो कैसे ढूंढने उसको, और अल्लाह जैसा हमने बनना तो नहीं है ना, अल्लाह कोई शख्सियत हमारे नजर में तो नहीं है ना, अल्लाह तक पहुंचना है तो कुरान के जरिए पहुंचाए, और अगर अमल तक पहुंचाना है ना तो नबी सल्लम के जरिए पहुंचा। बचपन से आपके 3-4 साल के अगर बच्चे हैं ना, मैं कहती हूँ आपके रॉ मटेरियल मौजूद है, चाहे आप इसको क्रूड रहने दें, चाहे इसको घड़ घड़ा के क्या बना लें, आप अपने बच्चों के खून में, जैसे दूध पिलाते हैं ना अपने बच्चों को, मैं दूध पिलाती हैं, आप उनके खून में कुरान की मोहब्बत और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत डाल दें। कुरान उनको अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचाएगा और रसूल की मोहब्बत उनको अमली जिंदगी में ले आएगी। मैं भी इस तरह से महसूस नहीं करती थी, हम सबने जिंदगी ऐसी गुजारी है ना जैसे भी होती है, हम इल्म वाले हों, अमल वाले हों, जो भी, लेकिन शौरी इल्म हमारे पास तभी आता है जब हमें कुरान समझ आता है। अभी भी मैं मस्जिद नबी में थी ना, तो मैं जैसे किसी अपने प्यारे को मिस करता है ना बंदा, जिसको हम अपनी जुबान में ये कहें कि एक झलक दिखा दो, तो मैं इस तरह अल्लाह के नबी के लिए महसूस कर रही थी कि इतने करीब है आप, इतना आप, हमारा ईमान है कि अल्लाह के नबी कब्र में और उनकी बरजख की कैफियत जो अहदीस में, हमारा उस पर भी ईमान है। तो मैं ना अपने दिल में एक वो तड़प नबी सल्लम के लिए महसूस होती है, और ये कब हुई मैं अपने दिल को पूछती, मुझे ये कब हुई, जब मैंने अल्लाह के नबी के मिशन को पढ़ा, तफसीरों के दौरान भी और सीरत के दौरान भी, अब मुझे नबी सल्लम अपने लगते हैं, यानी अब मुझे नबी सल्लम अपने खानदान का हिस्सा, माँ बाप भाई बहन, उनसे भी ज्यादा, यानी जैसे दिल चाहते हैं ना कुछ अरसे बाद अपने प्यारों को मिले, साल गुजरने लगता है तो कहते हैं माँ को मिल आए, बाप को मिल ले, भाई को मिलते हैं ना, अब वो मोहब्बत नबी सल्लम से महसूस होती है। तो ये सारी बात इस पे शुरू हुई है कुरान हिफ्ज करने से।